प्रभात जी, आप यहाँ हमारे SBS के स्टूडियो में आई हैं और एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये मुद्दा जुड़ा है मानसिक स्वास्थ्य के साथ में। प्रभात जी, अक्सर लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने में झिझकते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। आप माइंड ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई हैं, तो मेंटल हेल्थ और इससे जुड़ी कुछ बातों के बारे में हमें जानकारी दें।
या डेफिनेटली अनीता जी, जैसे कि आपने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में धारणाएं हैं, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी मानसिक स्वास्थ्य, व्हाट इज मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस। इट इज़ अ हेल्थ प्रॉब्लम जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है उस चीज़ को, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं या फिर किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं बीइंग इन टेक्नोलॉजी, मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस अभी भी डेफिनेटली एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में और ये एक बहुत दुख की बात है। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी इसके बारे में। सबसे पहला एग्जांपल तो हमारी खुद की फैमिली में किसी लेडी ने सुसाइड किया। हमने जब उनकी फैमिली से, हमें शुरू में पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया था, वो मेरी एज की थी, उनको हार्ट अटैक आया था। देन एक हफ्ते दो हफ्ते के बाद हमें पता चला कि नहीं, उनको हार्ट अटैक नहीं आया था, उन्होंने सुसाइड किया था। तो मैंने किसी से पूछा जो उनके जानने वाले थे कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया, क्या हो गया था। तो जो मुझे जवाब आया वो ये था कि पता नहीं, उसको कुछ हो गया था, वो पागल सी हो गई थी, वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी, वो बस रूम में बैठी रहती थी, रोती रहती थी। एक्चुअल रीजन था डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, उसका इलाज करवाना होता है। तो ये तो एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल है कि मेरी एक फ्रेंड है, उनको नी को चोट लगी, वो गिर गई, उनको प्लास्टर चढ़ा, उनकी फ्रेंड्स उनको पूछने आई, उनका हाल पूछने आई, उनके लिए खाना बना के लेके आई।
अच्छा।
थोड़े ही दिन बाद वो स्किज़ोफ्रेनिया उनको हुआ, उनको कोई पूछने नहीं आया। कितनी सैड ये बात है कि क्योंकि आपको खून या खरोंच या घाव नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब आदमी बीमार नहीं है।
कोई भी बीमारी जो होती है, आप बुखार चढ़ता है, शरीर कमजोर हो रहा है, आपको पता
आपको
चल
दिख रहा है
जी,
आपको वो घाव दिख रहे हैं, आपको चोट दिख रही है, आपको ये दिख रहा है बंदा धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। जबकि मेंटल इलनेस में इट्स ऑल हैपनिंग इन द ब्रेन, यू डोंट नो। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है कि स्टिग्मा जिसे हम समझते हैं, उसका रीजन है हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास उस चीज की एजुकेशन नहीं है। हम उसको बड़े ही एक वेग टर्म के साथ जोड़ते हैं, जैसे जो टर्म्स हम कुछ यूज करते हैं
जी,
कि वो पागल है, उसका दिमाग खराब है, उसको पता नहीं क्या हो गया है। अभी क्या हो गया है, देयर इज अ टर्म, द पर्सन कैन बी हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया, दे कैन हैव बाइपोलर, दे कैन हैव BPD, साइकोटिक एपिसोड्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है,
जैसे जब बुखार होता है,
जैसे
तो
बुखार होता है,
टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, फ्लू हो गया।
यस, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि क्या कहना है या उस आदमी के साथ कैसे ट्रीट करना है, तो लोग अपने आप को ना विड्रॉ कर लेते हैं उस आदमी से। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। लोगों को अपने आप को इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्या है एक मेंटल इलनेस।
जी, इसके साथ एक और भी बात आती है कि समस्या आ गई, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया किसी भी कारण से, लेकिन उसका प्रभाव घर वालों पर क्या पड़ता है? जो बीमार का ध्यान रख रहे हैं, उनका हाल कौन पूछता है, उनका ध्यान कौन रखता है?
दैट इज ट्रू। उनको हम केयरर कहते हैं, जैसे आपने कहा केयरर, जो केयर करते हैं उस फैमिली मेंबर की जिसको कि मानसिक रोग है। केयरर एक 24 आवर की जॉब है जो उस आदमी का ख्याल रखते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग अपनी नौकरी छोड़ते हैं उस आदमी का ख्याल रखने के लिए। केयरर कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, और कई बार तो छोटे बच्चे या कजन्स, एक्स पार्टनर भी होते हैं जो उसका ख्याल रखते हैं। आई से दे आर दोज अनसंग हीरोज जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। हर आदमी पूछता है कि बीमार कैसा है, क्योंकि वो बीमार दिख रहा है। एक तो मेंटल इलनेस, लोग मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस के पेशेंट के बारे में बात नहीं करते हैं। दूसरा, जितने लोग करते हैं वो सिर्फ पेशेंट के बारे में बात करते हैं, केयरर के बारे में नहीं बात करते हैं जो उस आदमी का ख्याल 24 घंटे रख रहा है। एक किसी पेशेंट का ख्याल रखना ही कितनी डेडिकेशन का काम है, कितना रेजिलियंस चाहिए है उसके लिए, कितना पेशेंस चाहिए है
जी।
उसके ऊपर से एक मेंटल इलनेस के पेशेंट का ख्याल रखना जिसके बारे में आपको भी नहीं पता, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास भी नहीं है, बीमारी डायग्नोज हुई है, आपके लिए एक इट्स अ न्यू लाइफ दैट हैज ओपन्ड फॉर अस।
ये मेंटल इलनेस तो जैसे एक ग्राफ की तरह है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाता है।
दैट इज ट्रू कि देयर आर डेज जब रिलैप्स होता है, देर आर डेज जब आदमी एकदम ठीक रिएक्ट करता है, देर आर डेज जब आदमी को साइकोटिक एपिसोड्स आते हैं
जी.
जब आपको पता नहीं कि उसको हैंडल कैसे करना है. तो जो आदमी, जो केयरर उसके साथ रह रहा है, वो अपनी जिंदगी की प्लानिंग नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल ट्रीटिंग अ फिजिकल इलनेस पेशेंट, आपको पता है कि घाव 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का हो गया है, ये अगले 5 दिन में, अगले 5 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, तो आप उसके बाद काम पे जा सकते हैं, आप बाहर घूमने जा सकते हैं
जी. वो दिख रहा है
मेंटल इलनेस में आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको पता नहीं है. दूसरी चीज आती है कि डिसीजन मेकिंग की. फिजिकल इलनेस के लिए आपने किसी मरीज की पट्टी कर दी, आपने उसको दवाइयां दे दी, वो सो गया
जी.
लेकिन मेंटल इलनेस में आपको नहीं पता कि अभी क्या होगा. हो सकता है वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, हो सकता है आप बाहर गए और तब तक आप घर से के बाहर से वापस आए,
तब तक
देयर इज एंटायरली अ डिफरेंट सिनेरियो. पता नहीं वो किस स्टेज में है वो बंदा, आप क्या करेंगे. तो इसीलिए आप अगेन कुछ प्लान नहीं कर सकते हैं उसके बारे में
जी.
सो इसीलिए एक बहुत ही डिफरेंट हो जाता है फिजिकल इलनेस के पेशेंट को ट्रीट करना एंड मेंटल इलनेस के पेशेंट को. एंड ऑन टॉप ऑफ इट कि जो सोसाइटी में सब लोग पूछते हैं वो पेशेंट के बारे में पूछते हैं, केयरर के बारे में कोई नहीं पूछता कि तुम उसका ख्याल रख रहे हो, वो सोया, तुम सोए या नहीं सोए, तुम उसने दवाई ली, तुमने क्या किया. एक एग्जांपल मैं दूंगी कि जैसे एक लोग कहते हैं कि मुझे कभी टाइम नहीं मिलता, मुझे सिर्फ मेरे लिए टाइम तब मिलता है जब मैं रेस्ट रूम में होती हूँ. सोचिए रेस्ट रूम में कितनी देर होते हैं, 5 मिनट, 24 घंटे में से अगर वो 5 मिनट आपके लिए हैं, कितना आप स्ट्रेस झेल रहे हैं. और हम नहीं चाहते कि एक आदमी को ट्रीट करते करते आप भी वैसी ही कंडीशन में पहुंच जाएं. सो ये है केयरर जो जो सब कुछ टॉलरेट करती हैं
जी. तो उनके लिए क्या सलाह देंगी आप?
सबसे पहले तो क्यों है ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर केयरर्स, मैं कहूंगी
जी.
अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में इन जनरल, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में ये एक चीज़ है कि हम किसी भी रिलेशनशिप को या किसी भी बीमार को एक मोरली इम्पेरेटिव या क्रूशियल उससे देखते हैं कि किसी को, हमारे फैमिली में किसी को कुछ हो गया है तो हमें उसका ख्याल रखना है
जी.
उसका ख्याल रखते हुए हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, इट्स अ जनरल टेंडेंसी. दूसरा होता है कि हमारी पर्सनल वैल्यूज, सोशल एक्सपेक्टेशन, कि अगर मैं किसी का ख्याल रख रही हूँ उसके बाद ख्याल रखते रखते अगर मैं कॉफी पीने भी चली गई अपने फ्रेंड के साथ तो लोग क्या कहेंगे, या फिर कि गिल्ट होता है कि अगर मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा.
केयरर होता
जो
है,
केयरर होता
उसके
है.
सामने उसे बीमार दिख रहा है इसलिए
अपनी
जो भी इच्छाएं हैं जो
वो
भी
पीछे वो एक बैक ट्रैक ले लेती हैं
जी.
और ये समझना बहुत जरूरी है कि सेल्फ केयर जरूरी है. जब तक आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे आप दूसरे आदमी का ख्याल कैसे रख पाएंगे. यू नीड टू गिव 100% टू दैट पर्सन. यू ओनली कैन गिव 100% व्हेन यू आर 100%. और एक ह्यूमन बींग की टेंडेंसी होती है हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं
जी.
हम सोचते हैं कि किसी से हेल्प मांगू वो पता नहीं क्या सोचेगा, मुझे सीरियसली हेल्प की जरूरत है भी या नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं कहीं उसको लगे कि मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ इसीलिए हेल्प मांगता हूँ. हेल्प मांगना एक बहुत बड़ी हो जाता है हमारी कम्युनिटी में किसी के लिए, किसी से अपने बारे में कि मुझे एक हेल्प की जरूरत है, और इसीलिए बहुत से लोग हेल्प मांग ही नहीं पाते हैं
जी.
तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है सेल्फ केयर. और सेल्फ केयर के लिए देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं केयरर्स के लिए रिसोर्सेज. क्योंकि मैं माइंड ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ी हुई हूँ
जी, मैं अभी आपसे वही पूछने जा रही थी,
उनके बारे में बात करूंगी कि क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं
जी.
सबसे पहली सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं जो सबसे स्ट्रांग है केयरर हेल्पलाइन है. इट्स अ टेलीफोन लाइन विच इज अ स्पेशलिस्ट सपोर्ट फॉर द केयरर्स. आप उस नंबर पे फोन कीजिए विच इज 1-300-554-660. आपको कोई भी तकलीफ है केयरिंग के बारे में आप उनसे बात कीजिए
जी.
फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके घर में कोई फैमिली मेंबर अभी डायग्नोज हुआ है मेंटल हेल्थ से, आपको नहीं पता कि क्या करना है, आपको डॉक्टर ने कुछ बताया है, आपके जनरल प्रैक्टिशनर ने, साइकेट्रिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है आपके पास, तो आप फोन कीजिए वो आपको बताएंगे कि क्या रास्ता है, क्या करना है अभी आपको, नेक्स्ट स्टेप क्या है. दूसरे केसेस में जैसे कि केस वर्कर है, सपोर्ट वर्कर है
जी.
अगर आपको अपना साइकेट्रिस्ट बदलना है तो आप उनको फोन कीजिए कि राइट एडवाइस के लिए. दे माइट नॉट बी एबल टू चेंज दैट साइकेट्रिस्ट बट दिल गिव यू द राइट एडवाइस. या फिर जनरलाइज केसेस में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, बट आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है. यू वॉन्ट दैट, यू नीड टू लेट योर हार्ट आउट टू समवन. डजंट मैटर इवन यू वॉन्ट टू क्राई, रिंग, देर आर पीपल हु क्राई एंड देर इज नो हार्म इन क्राइंग. एटलीस्ट यू आर लेटिंग योर हार्ट आउट, इट गिव्स यू आर that letting that negative energy out from your body. जी, विच इज इम्पोर्टेंट।
और बहुत आसान होता है किसी दूसरे के सामने अपनी बात कहना, क्योंकि आपके मन में कहीं ये बात होती है कि ये मुझे जज नहीं कर रहे हैं।
दैट इज ट्रू
जी।
और दूसरी सर्विसेज है एजुकेशन वर्कशॉप्स। क्या होता है कि हर एक जो केयरर है उसको जरूरत होती है ज्यादा से ज्यादा समझने की मेंटल हेल्थ के बारे में, तो माइंड ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन वर्कशॉप्स कंडक्ट करता है, विच कैन बी इन रिकवरी एंड होप, बिल्डिंग रेजिलियंस, आपको चैलेंजिंग बिहेवियर मैनेज करना है उस केयरर का, आपको उसको ना कैसे कहना है, क्योंकि आप बार बार किसी आदमी को हाँ नहीं बोल सकते, आपको उसको भी तो स्टेबलाइज करना है ना। और या फिर आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, कोई लीगल इश्यूज है, उसके बारे में एजुकेशन वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं विच आर फ्री, आप उनमें आ सकते हैं। जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं एंड जो लोग जिनको एक लिव्ड इन एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं ना, वो है उन टीचर्स को, वो आपको बताते हैं कि कैसे आपको डील करना है उस पेशेंट के साथ। तीसरी चीज है शॉर्ट टर्म आउटरीच सर्विसेज, जैसे कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, आपको खुद की अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना है, किसी फ्रेंड के साथ कैफे में जाना है, किसी और अपॉइंटमेंट के पास जाना है, पर अगर आप जाएंगे तो आपके लव्ड वन का ख्याल कौन रखेगा घर में? तो क्या होता है, स्किल्ड मेंटल हेल्थ वर्कर आते हैं, वो उसका ख्याल रखते हैं ताकि आप अपनी प्रायोरिटीज को अटेंड कीजिए
जी।
उसके बाद अगला जो केयरर की सर्विसेज हैं वो है रेस्पाइट सर्विसेज। रेस्पाइट सर्विसेज में क्या होता है कि रिक्रिएशन डेज होते हैं, रिक्रिएशन इवेंट्स होते हैं, वो आपको बाहर लेके जाते हैं ताकि आपको टाइम आउट मिले केयरिंग ड्यूटीज से, ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले उस चीज से। फॉर एग्जांपल आप किसी थिएट्रिकल शो में चले गए, लंच या डिनर चले गए, एंड दे आर ऑल फ्री सर्विसेज, देयर इज नो कॉस्ट फॉर दीज सर्विसेज, यू नीड टू रिंग ऑन दैट केयरर हेल्पलाइन एंड देन
फिर
वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको, आप एंटाइटल्ड हैं उन सर्विसेज के लिए, कैसे आप अवेल कर सकते हैं
जी।
अगली जो सर्विसेज आती हैं वो है सपोर्ट ग्रुप। सपोर्ट ग्रुप एक पेयर सपोर्ट ग्रुप है जहाँ पे हम एक दूसरे की विजडम और एक दूसरे की लर्निंग और एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, एंड वी ड्रॉ पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम ईच अदर। जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है, कहीं वो ठीक हो भी सकता है, पर कई बार जो आप कर रही हैं हमको लगता है कि नहीं, शायद मैं उस तरीके से ट्राई करूं।
बिल्कुल।
एंड बाय गोइंग इनटू द सपोर्ट ग्रुप हमें रियलाइज होता है कि आप अकेले नहीं हैं जो ऐसे इस चीज से गुजर रहे हैं, दूसरे लोग भी हैं, और वो आपको एक मोटिवेशन देता है अपने उस मेंटल हेल्थ रिलेटिव को ट्रीट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। जैसे आपको नहीं पता फॉर एग्जांपल कि बार बार आपका जो रिलेटिव है वो एक उसको कैसे किसी चीज के लिए मना करना है, बट कोई दूसरा आपको एग्जांपल देता है तो आपको लगता है हाँ मुझे शायद ऐसे उसको मना करना चाहिए था। दे ट्रीट यू कि हाउ टू वैलिडेट योर फीलिंग्स, हाउ टू ड्रॉ पॉजिटिव एनर्जी बेसिकली
जी।
उसके बाद आती है वार्म लाइन, बट द ओनली थिंग इज इट्स अ सर्विस फॉर माइंड क्लाइंट पीपल। जो लोग माइंड के क्लाइंट हैं उनके केयरर्स के लिए ये सर्विस है।
अच्छा।
आप इस लाइन पे फोन करिए, आपको वो बताएंगे, आपको किसी भी चीज में, जैसे आपको कोई नया जॉब ज्वाइन करना है, नया कोर्स ज्वाइन करना है, आपको पता नहीं कहाँ से आप बात करें, तो आप इनसे बात करिए, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपको काउंसलिंग सेशंस के लिए भी रेफर करेंगे।
अच्छा।
दूसरे सपोर्ट ग्रुप के लिए रेफर करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज वार्म लाइन, इट्स बेसिकली टू स्प्रेड वार्म्थ टू केयरर्स, दैट इज कॉल्ड एज वार्म लाइन। माइंड रिकवरी कॉलेज है, माइंड का अपना एक कॉलेज है जहाँ पे वो कोर्सेज कराते हैं केयरर्स को, जिनको आगे बढ़ना है इन टर्म्स ऑफ टू हेल्प द कम्युनिटी, टू गिव अ लिव्ड इन एक्सपीरियंस, टू शेयर दैट लिव्ड इन एक्सपीरियंस। कोर्सेज कैन बी फॉर एग्जाम्पल इन बिल्डिंग अप कॉन्फिडेंस, इन माइंडफुलनेस, इन लाइक हाउ फूड अफेक्ट योर मूड एंड अदर कोर्सेज। ये सारे कोर्सेज जो माइंड क्लाइंट्स हैं उनके लिए फ्री हैं
जी।
उसके बाद माइंड की वेबसाइट पे एक केयरर फॉर्म है, वो एक चैटिंग के जैसे है कि आप अपने कंसर्न उस पर डालिए, जो दूसरे सिमिलर ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो आपको कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको क्या करना है
जी।
एक तरह से आपका दुख वो हल्का हो जाता है, आधा हो जाता है कि
बिल्कुल,
तो आप उससे स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हो। सो ये सारी सर्विसेज हैं जो माइंड ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करता है, और जैसे कि मैंने कहा कि आप उनकी हेल्पलाइन पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी सर्विसेज आपके लिए सुटेबल है। केयरर्स को चाहिए कि वो जाएं, बात करें, सबसे पहले तो अपने लिए, सेल्फ केयर के लिए सोचिए। सेल्फ केयर के लिए सोचना ये नहीं है कि आप अपने फैमिली मेंबर के लिए नहीं सोच रही हैं, आप ये सोच रही हैं कि जब तक आप अपनी हेल्प करेंगे तभी तो आप दूसरे की हेल्प कर पाएंगे ना, और आप बेटर उसकी हेल्प कर पाएंगे।
बिल्कुल। केयरर कोई भी हो, जैसे आपने शुरू में बताया कि बच्चा है, वाइफ है, हस्बैंड है, पेरेंट्स हैं, किसी के लिए भी, एक्स पार्टनर्स हैं, किसी के लिए ये बात है कि उनको अपनी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना है और अपने लिए एक सपोर्ट ढूंढना है, जो हम झिझक जाते हैं मानने के लिए कि हाँ हमें भी चाहिए,
हमें भी जरूरत है सपोर्ट की, क्योंकि वही है हमारी ब्रिंगिंग अप ऐसी है कि हमें लगता है हम अपने आप को सबसे पीछे करते हैं और अपनी प्रायोरिटीज जो हमारे रिलेशनशिप के लिए प्रायोरिटीज है उनको आगे करते हैं
जी। किसी भी सोसाइटी में, शायद में। ये एक बहुत ही कहना चाहिए कटु सत्य है।
दैट इज ट्रू।
और आपने इतनी अच्छी तरह से सारी बातें बताई हैं प्रभात जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं के लिए ये सारी जानकारी आपने दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जिस तरह से बताया है बहुत से लोगों को इससे फायदा होने वाला है।
थैंक यू अनीता जी।